ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रही। दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को नीट और सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के गोदाम पर छापेमारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली पर्यावरणीय चुनौतियों पर समाधान तलाशने के लिए इंटरमीडिएट और स्नातक विद्यार्थियों के लिए चेंज मेकर्स समर बूट कैंप आयोजित कर रहा है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का नई दिल्ली में समापन हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रही। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से की। प्रश्नकाल के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि और कुलदीप कुमार को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक और सदन में विपक्ष की नेता आतिशी भी सदन से बाहर चली गई। इससे पहले विपक्ष की नेता आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष ने ये कहते हुए चर्चा की अनुमति नहीं दी कि सदन में चर्चा के लिए सभी मुद्दे सदन के नियमों और विनियमों के अंतर्गत लिए जाते हैं और विपक्ष इस बारे में जानता है। दिल्ली विधानसभा ने बजट सत्र को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। 24 मार्च को शुरू हुआ सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को नीट और सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसटीसी इंटरनेशनल और एक निजी कोचिंग संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दिल्ली के छात्रों को 2 अप्रैल से 2 मई तक प्रतिदिन 6 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी, जिसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, सामान्य योग्यता और अंग्रेजी जैसे विषय शामिल है। छात्रों को संरचित संशोधन के लिए सहायता सामग्री और उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षण सेवा और सहायता उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली के अधिक से अधिक छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के साथ साथ देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का सपना भी साकार होगा।
छात्रों को नीट 2025 और सीयूईटी 2025 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेजेस और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भेजने के लिए बिना किसी शुल्क के 1,63,000 बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी।
वहीं श्री सूद ने कहा कि निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दिल्ली के छात्रों को देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराने में जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
दिल्ली सरकार ने एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट और नीट एग्जाम के लिए 30 दिन में 180 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे की कोचिंग निशुल्क बच्चों को दी जाएगी।
सरकार ने आशा जताई कि यह अनोखी पहल समाज के वंचित समुदायों के छात्रों के लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली पर्यावरणीय चुनौतियों पर अभिनव समाधान तलाशने के लिए इंटरमीडिएट और स्नातक के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 3 सप्ताह का चेंज मेकर्स समर बूट कैंप आयोजित कर रहा है। ये बूट कैंप 9 जून से 27 जून तक चलेगा। कैंप के लिए आवेदन पत्र IIT दिल्ली के सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल या स्लॉट उपलब्ध होने तक है। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी IIT दिल्ली के अकादमिक आउटरीच विभाग से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों पर एक तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार यह अभियान 15 घंटे से अधिक समय तक चला। एक रिपोर्ट।
अभियान के दौरान 3,500 से अधिक उत्पादों को जब्त किया गया। इनमें फर्जी ISI लेबल वाले उत्पादों सहित वह आइटम भी शामिल थे जिनमें ISI मार्क नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि जब्त किए गए उत्पादों का अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रुपए है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली में फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर एक अलग छापेमारी में स्पोर्ट्स फुटवेयर का स्टॉक पाया गया जो आवश्यक ISI मार्क और निर्माण तिथि के बिना डिस्पैच के लिए पैक किया गया था। इस अभियान के दौरान 6 लाख रुपए की कीमत वाले लगभग 590 जोड़े स्पोर्ट्स फुटवेयर भी जब्त किए गए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक महीने में BIS की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ तथा श्रीपेर बंदूर में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद जब्त किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने राजधानी के सागरपुर थाने के मुख्य हवलदार और हवलदार को रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। CBI के अनुसार आरोपी पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित शिकायतकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामले में नहीं फंसाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद आरोपी 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने पर सहमत हो गए थे। इस मामले में जांच जारी है। दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए सभी संपत्ति कर कार्यालय 31 मार्च को खुला रखने की घोषणा की है। कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार के लिए पात्र बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिंदू नववर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। दिल्ली सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा से होगी। श्री मिश्रा ने कहा कि नववर्ष से शुरू होने वाली इन कार्यक्रमों की श्रृंखला रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद अम्बेडकर जयंती पर समाप्त होगी। सरकार के सभी विभाग इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आज विश्व रंगमंच दिवस है। ये दिवस रंगमंच उसके कलाकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मानवीय अभिव्यक्ति में रंगमंच की भूमिका के सम्मान के लिए हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय रंगमंच और शांति की संस्कृति है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी।
यह दिन मानव इतिहास में सबसे पुराने कला रूपों में से एक रंगमंच के महत्व को दर्शाता है। इस अवसर पर रंगमंच से जुड़े कलाकार और समितियां कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक, पुरस्कार समारोह और चर्चाएं आयोजित करते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने रंगमंच को मानव जीवन और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
NSD जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से लेकर आज तक अथक रूप से निस्वार्थ भाव से पूरे समाज में रंग कर्म कैसे आगे बढ़ेगा और सार्थक रंग कर्म कैसे आगे बढ़ेगा उस दिशा में रात दिन काम करता आया है और आगे भी करेगा। और युवा पीढ़ी को या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको तो केवल एक ही चीज कहूंगा कि मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
दूसरी ओर रंगमंच कलाकार और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पुनीत तिवारी ने आकाशवाणी समाचार से थिएटर से जुड़े अपने विचार साझा किए।
थिएटर आपको जोड़ कर रखता है, आपकी जड़ों से जोड़ता है। थिएटर में सिर्फ और सिर्फ आप अभिनय नहीं सीख रहे होते, आप हर कुछ सीख रहे होते हैं, आप सेट सीख रहे होते हैं। थिएटर जीने की कला है, आप कैसे जीते हैं उसमें हर चीज सीखना होता है। कोई एक चीज आप सीख लिए और उससे आपका विकास नहीं होता है, तो थिएटर आपको हर कुछ सीखने का मौका देता है। और थिएटर में कोई रीटेक नहीं है, जैसे आप कैमरे में अगर कैद किए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे रीटेक की संभावना है। थिएटर भी जीवन की तरह जिसमें कोई रीटेक नहीं है।
विश्व रंगमंच दिवस का मुख्य उद्देश्य रंगमंच की शक्ति को पहचानना और इसे एक प्रभावशाली कला के रूप में बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वेदियान के साथ अमन यादव।
दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा खेलों का रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया है। इस दौरान युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे भी मौजूद रही। इससे पहले पैरा टेबल टेनिस के फाइनल खेले गए पुरुषों के क्लास 6 वर्ग में येजदी एसपी भामगारा ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की क्लास 7 स्पर्धा में संजीव जी हम्मा नावर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की क्लास 6 स्पर्धा में भाविका कुकाडिया ने स्वर्ण जीता। क्लास 7 वर्ग में प्राची पांडे ने पहला स्थान हासिल किया। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा में आज ध्वनिमत से बजट 2025-26 पारित हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 1,00,000 करोड़ के बजट को पेश किया था। बजट की चर्चा की शुरुआत भाजपा विधायक पूनम शर्मा ने की। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने बजट को ऐतिहासिक बताया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार के समय काम पर कम ध्यान दिया और केवल पार्टी के प्रचार पर खर्च किए। उन्होंने बताया कि कोरोना में जान गंवाने वाले सिर्फ 97 लोगों को मुआवजा दिया गया और प्रचार पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। उन्होंने कहा कि इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए वित्तीय लीकेज रोक कर और अपने राजस्व से जुटाएंगे। यमुना बार विकास बोर्ड को दोबारा सक्रिय करेंगे। इसके अलावा सभी मंडियों के विकास कार्यों को गति देंगे। अलग अलग राज्यों के राज्य दिवस मनाया जाएगा। 1 अप्रैल को उड़ीसा का राज्य दिवस है जिसे मनाया जाएगा। आप नेता गोपाल राय ने बजट पर कई सवाल खड़े किए। भाजपा विधायक अशोक गोयल ने भी बजट की प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में दिल्ली के लिए नया सवेरा लेकर आया है। कुलवंत राणा ने भी दिल्ली देहात किसानों के हित का बजट बताया, जबकि आप नेता विशेष रवि ने कहा कि बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। प्रश्नकाल की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शून्यकाल में उठाए जाने वाले मुद्दों पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष का एक पत्र मिला जो कि भ्रांति फैला सकता है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि वे सदन को किसी भी तौर पर राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। बाधा पहुंचाने के लिए स्पीकर ने मुकेश अहलावत को निष्कासित कर दिया। हालांकि इसके बाद ही समूचा विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर गया। प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने इलाके के मुद्दे बताए। इस दौरान कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने दिखे। गतिरोध बढ़ता देख स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को कई बार नियमों का हवाला देना पड़ा, जबकि विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन भी किया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने साफ किया कि अवैध कब्जे जहां भी हटाए जाएंगे, वहीं अवैध मांस मछली विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विधानसभा में अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न समितियों के मामले बंद करने पर सहमति बनी और प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सदन को बढ़ाने पर विपक्ष ने जब सवाल खड़ा किया तो स्पीकर ने कहा कि नेता सदन के साथ विचार विमर्श कर सत्र को विस्तार दे सकते हैं। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने प्रश्न किया कि सील्ड बैंक्वेट हॉल भी चल रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसी कोई सूची है तो दे, जरूर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा मांस मछली विक्रेताओं का कई जगहों पर कब्जा है और उन्हें हटाया जाएगा। डॉक्टर अनिल गोयल ने रोहतास नगर विधानसभा में मल्टी लेवल पार्किंग व अवैध कब्जे से मुक्ति की बात कही, जबकि भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने दिल्ली के सभी लोक निर्माण विभाग की सड़कों से अवैध कब्जे हटाने का पूरक प्रश्न उठाया। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यहां एसटीएफ है और अवैध कब्जे समय सीमा से हटाए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रही। दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को नीट और सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के गोदाम पर छापेमारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली पर्यावरणीय चुनौतियों पर समाधान तलाशने के लिए इंटरमीडिएट और स्नातक विद्यार्थियों के लिए चेंज मेकर समर बूट कैंप आयोजित कर रहा है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का नई दिल्ली में समापन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।